मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 25 मई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन मैं आप लोगों को कुछ सूचनाएं नियमित रूप से दिया करता हूं, तो आज भी कुछ सूचनाएं हैं और ये सारी की सारी सूचनाएं वही हैं जो पिछले शुक्रवार को थी या उससे पिछले शुक्रवार को थी, लेकिन फिर भी एक बार बताना जरूरी होता है। तो पहली बात तो यह है कि कल और परसों यानी कि शनिवार और रविवार को चूंकि छुट्टियां होती हैं तो उस दिन डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, लेकिन शनिवार को बाकी चीजें वैसे ही होती हैं और कुछ हम एक्स्ट्रा भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रेस क्लिपिंग्स, अखबारों की जो आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही योजना और कुरुक्षेत्र के दो दो यानी कि टोटल चार आर्टिकल्स दिए जाते हैं जिसमें हिंदी के दो होते हैं और अंग्रेजी के दो आर्टिकल्स होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप लोगों को वीकली क्वेश्चंस दिए जाते हैं एक मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर और उसका पर्पज ये होता है, देखिए दो पर्पज होते हैं, उसका पर्पज सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं है कि आप क्वेश्चन देखें और उस लिखने का अभ्यास करें, वो तो है ही, वो तो सबसे बड़ा पर्पज होता है, लेकिन उसके साथ ही उसका एक उद्देश्य यह भी होता है कि आप ये जान सकें कि करंट में जो कुछ भी चल रहा है उन करंट को आधार बना करके सिविल सर्विस किस तरीके के प्रश्न पूछता है। क्योंकि देखिए जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं तब तक आप अपनी तैयारी को उस तरीके के अनुसार नहीं ढाल सकेंगे और ये सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इनफैक्ट तरीके का ही है, आपको सब मालूम होता है, आप जानते हैं, आपने खूब मेहनत की है, पढ़ा हुआ है, याद भी है, लेकिन पता लगा कि उस तरीके के अभाव के कारण आप वह उत्तर नहीं दे पा रहे हैं जो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और वही असफलता का कारण बन जाता है। तो मित्रों मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि उन प्रश्नों को जो वीकली क्वेश्चंस के रूप में हम लोग देते हैं बहुत आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद उस पर थोड़ा सा विचार भी करें कि भाई ये प्रश्न किस टॉपिक से है। उस टॉपिक, एक तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया, आपके दिमाग में विचार आना चाहिए कि भाई ये प्रश्न अगर पूछा गया है यानी कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट था। और चूंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट पर ही बेस्ड होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, तो मान लीजिए कि आपने उस टॉपिक को मिस कर दिया है तो आप स्वमूल्यांकन कीजिए कि भाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक के होते हुए मुझसे वो मिस कैसे हो गया। लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपसे मिस नहीं हुआ है, तो अपनी पीठ थपथपाइए, अपनी तारीफ भी करना सीखिए और फिर देखिए कि जो टॉपिक है जो मैंने पढ़ा था और उस पर अब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं। अगर नहीं लिख पा रहा हूं, लिख पा रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आपको विचार करना पड़ेगा मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं, मुझसे कहां चूक हुई है, मुझे और क्या करने की जरूरत है। इन सब पर आप विचार कीजिए और अपने अंदर फिर वो सुधार लाते चले जाइए। तो ये जो वीकली क्वेश्चन हर सप्ताह हम लोग एक देते हैं तो ये मल्टी फैसेट्स है, तब आप इसको कई आयाम से अपने उपयोग में ला सकते हैं। और इसके बाद मित्रों एक स्पेशल ऑडियो लेक्चर होता है जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए दिया जाता है स्पेशली, और मैं आज क्लास स्टूडेंट्स की इस बारे में तारीफ करना चाहूंगा, खासकर हमारे जो आठवें बैच के स्टूडेंट रहे हैं कि उनके बहुत अच्छे रिमार्क्स इस स्पेशल ऑडियो गाइडेंस के बारे में मिल रहे हैं, उनको खूब मजा आ रहा है और इसे वे सब खूब उपयोगी पा रहे हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स आप इसका भरपूर उपयोग कीजिए और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर है और इसमें से ज्यादातर टॉपिक्स याद रखिए कि हम लोगों ने इस तरीके के लिए हैं जो लंबे समय तक आपका साथ देंगे, मतलब ये उस तरह से एकदम करंट बेस्ड नहीं है, आपने ध्यान दिया होगा तो आप ये मान करके चलिए कि ये आपके लिए एक बहुत खूबसूरत नोट्स ही है, फर्क इतना ही है कि ये लिखित फॉर्म में ना होकर के ये एक तरह से वॉयस फॉर्म में है, साउंड के फॉर्म में है, आवाज में है, लेकिन आप इन्हें सहेज कर रखें और एक बार ही सुनकर मत छोड़ दें, प्लीज आप इन्हें बार बार सुने ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएं। और आपने महसूस किया होगा कि इसमें फ्लैट तरीके से चीजें नहीं बताई गई हैं, चीजें समझाई गई हैं जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो दोस्तों ये थी कुछ सूचनाएं और अब मैं आता हूं आज के हमारे विषय पर। और आपको मालूम है कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पार्ट होता है जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर का उसकी तैयारी के बारे में बातें कर रहे हैं। हो सकता है मित्रों की इससे पहले जो मैंने इस टॉपिक पर यू कह लीजिए कि लगभग 4 बार बात की है और उनसे थोड़ी सी आपको ऊब होने लगी हो। मैं जानता हूं कि स्टूडेंट का कुछ मैकेनिज्म इस तरह का बन गया है जो हमारी शिक्षा पद्धति है कि वो सिलेबस से मैच करता है, सारी चीजों को सिलेबस से मैच करके देखता है कि 4 हमने लेक्चर सुन लिए सर के तो हमारा सिलेबस कितना कवर हुआ। वो इस बात को भूल जाता है, अब्राहम लिंकन ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कोई 6 घंटे लकड़ी काटने के लिए कहे, लकड़ी काटने का काम दे दिया जाए कि तुम 6 घंटे तुम्हें लकड़ी काटना है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 घंटे तो अपनी केवल कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा और केवल 2 घंटे लकड़ी काटूंगा, यानी कि उस 2 घंटे में मैं दूसरों के 6 घंटे के बराबर लकड़ी काट लूंगा, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कुल्हाड़ी को तेज करना, यानी कि तैयारी कैसे की जाए, उसके जो इक्विपमेंट है, उसके जो हथियार है, उनको ठीक ठाक करना। तो वही फिलहाल हम लोग कर रहे हैं, कुल्हाड़ी की धार को तेज कर रहे हैं। मैंने ये बात इसलिए कही ताकि आपके अंदर अगर ऊब भी पैदा हो रही हो कि यार इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा आप अपने उस ऊब पर नियंत्रण रखें, तार्किकता के आधार पर उसका विवेचन करें अपनी ऊब का और इससे जुड़े। अंततः यही चीजें जो है आपकी तैयारी को इनफैक्ट धारदार बना पाएंगी, राइट। फ्रेंड्स, कल वाले ऑडियो लेक्चर में मैंने आपसे चुनौतियों के बारे में बात की थी कि इनफैक्ट जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय की तैयारी कर रहे होते हैं तो क्यों हमें वो इतना विषय कठिन लगता है, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि ठीक है, चलिए कठिन तो लगता है, ऊब भी होती है, लेकिन मुक्ति नहीं है, इसको छोड़ करके आपका काम नहीं चलेगा, और ये मैं शुरू में आपको बता चुका हूं और छोड़ना भी नहीं चाहिए। मान के चलिए कि अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मिस कर दिया तो सेकेंड पेपर में आपके जो स्कोर है वो बहुत कम हो जाएंगे, जिसे आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, यानी कि अवसर ही नहीं देना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करना चाहिए का मतलब कि नहीं मुझे इसमें स्कोर करना ही करना है। और जरा सा आप धीरज रखिए, धीरे धीरे आप पाएंगे कि इस विषय में आपको मजा आने लगेगा, और मेरी कोशिश यही है कि मैं किस तरीके से आपके लिए इस विषय को इंटरेस्टिंग बना सकूं। तो मित्रों, हम लोगों ने चुनौतियों की बात की है जिनकी वजह से ये विषय हमें बोझिल लगने लगता है, अब मैं उन्हीं की काट आपको बता रहा हूं कि ठीक है चुनौतियां तो हैं, लेकिन अगर चुनौतियां बता करके मैं छोड़ देता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चुनौतियां तो आप लोग भी जानते ही हैं क्योंकि भुक्तभोगी हैं। बस ये है कि मैंने उसको थोड़ा सा एकेडमिक तरीके से आपके सामने रख दिया है, हो सकता है कि आप उसे एकेडमिक तरीके से सामने न रख सके, लेकिन बता तो आप भी सकते हैं कि सर हमारे ये प्रॉब्लम है। तो अब मैं थोड़ी सी उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए इस पर बात करने जा रहा हूं। तो शुरुआत करता हूं मैं 2 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं। उसमें पहला बिंदु यह है कि देखिए, ज्ञान जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी है। कंटिन्यूअस प्रोसेस तो इस मायने में कि उसे लगातार आपको अपडेट करते चलना है ना, वो कहीं भी जाकर के रुकता नहीं है, उसका पूर्ण विराम नहीं है, वो अल्प विराम से यात्रा करता है। और दूसरा जो मैंने आपको कहा वो इस मायने में है कि ये जो विषय होते हैं ये विषय अपने एक सिस्टम से चलते हैं। सिस्टम से चलने का मतलब है कि आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आप 4th लेसन पढ़ रहे हैं, सिंपल उदाहरण से मैं अगर समझाऊं, 4th लेसन पढ़ रहे हैं और आप सीधे 4th में एंटर कर जाते हैं और आप 1st, 2nd, 3rd को छोड़ देते हैं, या 1st, 2nd को तो पढ़ लेते हैं, 3rd को छोड़ देते हैं और सीधे 4th पर आ जाते हैं, 4th के बाद आप 7th पर चले जाते हैं, क्योंकि जब आप कंटेंट देख रहे थे तो आप में एक उत्सुकता पैदा हुई कि यार पहले इसको पढ़ लिया जाए, तो मैं समझता हूं कि वो आप बहुत गलत कर रहे हैं। वो एक सिस्टम है, वो एक स्टोरी की तरह है, क्योंकि अभी जो आप 4th में जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो घटनाएं आप ध्यान से देख रहे हैं, उनके सूत्र 3rd, 2nd, 1st में भी हैं, यानी कि 3rd के सूत्र 2nd में है, 2rd के सूत्र 1st में है, और 1st, 2nd और 3rd के सूत्र 4th में है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप ये जाने कि मुझे किस विषय से पढ़ने की शुरुआत करनी है, और अगर मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं तो इससे पहले मुझे किस विषय को पढ़ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लगता है कि आप पॉलिटिकल साइंस से अपने विषय की शुरुआत करेंगे, सिविल सर्विस प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है आप कीजिए, नो डाउट पॉलिटिकल साइंस से आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपका इंडियन पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाए और जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन में पहुंचते हैं, प्लीज आप वहां रुक जाइए, अब आगे मत बढ़िए, हो गया, वहां रुक जाइए। अब आप क्या करेंगे? अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या कह लीजिए कि निर्देशन है, सजेशन है, और वो ये कि अब आप हिस्ट्री को उठाइए। हिस्ट्री को, चलिए मैं एक बार ये भी मान लेता हूं कि आप इंडियन हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, अभी आप छोड़ दीजिए इंडियन हिस्ट्री को, आपको लग रहा है कि यार पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से तैयार कर लें, छोड़ दीजिए, चलिए इंडियन हिस्ट्री को। ऐसे बहुत अच्छा होगा कि आप इंडियन हिस्ट्री के बाद फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें और फिर इसको पढ़ें, लेकिन चलिए आप इंडियन हिस्ट्री छोड़ दीजिए, तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़िए। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने के लिए इंडियन हिस्ट्री को जानना उतना जरूरी नहीं है, उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का शासन रहा है तो भारत अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा था, और फिर जो दुनिया की जो भी गतिविधियां हो रही थी उनमें भारत का कोई बहुत रोल नहीं था। ठीक है, ब्रिटेन के अधिकार में भारत रहा है तो थोड़ी बहुत चर्चा आपको कहीं कहीं मिल जाएगी, लेकिन वो आपको समझने में कहीं गड़बड़ी पैदा नहीं करेगी। तो अब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए। वर्ल्ड हिस्ट्री से पहले आप इंटरनेशनल रिलेशन को टच मत कीजिए। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से समझ लें, कंप्लीट हो जाए, फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन पर आइए, तब आप देखिए कि चीजें कितनी बदल चुकी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कि बिना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तैयारी मत कीजिए। देखिए, ये मैं केवल पहली बार की बात कर रहा हूं, जब आप शुरुआत कर रहे हैं, या अगर आप शुरुआत कर चुके हैं और आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध पल्ले नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो अब कर लीजिए, और अगर दोनों कर चुके हैं फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे तरीके से नहीं पढ़ी है। अब आप किस श्रेणी में हैं, अब आप खुद अपनी तरफ से फैसला कर लीजिए। दूसरी जो चीज है मित्रों, वो है मैप। प्लीज, मैप के बिना मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे हिस्ट्री पढ़ी जा सकती है, कैसे ज्योग्राफी पढ़ी जा सकती है, और सच पूछिए तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी समझा जा सकता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेसिकली क्या है? ये बेसिकली हिस्ट्री ही है, ये हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री ही है। बस फर्क इतना ही है कि हिस्ट्री में सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, लेकिन चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ रहे हैं तो इस हिस्ट्री के पार्ट में, या ये कह लीजिए कि केवल ये राजनीतिक नीतियों का इतिहास है तो इतिहास ही, लेकिन उसी वक्त केवल पॉलिटिकल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, आप इसे दूसरा नाम दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन, राइट। तो ये भी चूंकि इतिहास है, चाहे वो राजनीतिक इतिहास ही क्यों ना, तो आपको मैप की मदद लेनी ही चाहिए, तभी आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझ पाएंगे अच्छे तरीके से कि भैया ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको इतनी तरजीह क्यों दे रहा है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। मैं समझने की बात कर रहा हूं, मैं रटने और जानने की बात नहीं कर रहा हूं। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, चूंकि आपको इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी भारत के संदर्भ में करनी है, इसके केंद्र में भारत है, तो अब आपको जो भारत की जो विदेश नीति है उसे बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। जब तक आप भारत की विदेश नीति को बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक आप अगर पढ़ेंगे तो याद कर लेंगे, हो सकता है कि सीधे सीधे अगर याद किए हुए में से क्वेश्चन आ जाए तो बट नेचुरल कि आप आंसर भी दे लेंगे, लेकिन जहां भी थोड़ी सी एनालिसिस की बात आ गई या प्रश्न को थोड़ा सा भी घुमा दिया गया तो आप उसके अनुसार घूम नहीं पाएंगे। मतलब वहां घुमाव आ गया है लेकिन आप स्ट्रेट चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा, टर्न नहीं किया आपने, स्टेयरिंग को घुमाया नहीं, और वहीं तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो मित्रों, आपको भारत की जो विदेश नीति रही है शुरू से लेकर के और अब तक की बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, एक क्रिटिकल एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, केवल इंफॉर्मेटिव एनालिसिस नहीं, क्योंकि ये इसके केंद्र में है, एक इसके फाउंडेशन में है। और साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भी जो अपने विदेश नीतियों का निर्धारण करते हैं उनके मुख्य आधार क्या है, नॉट एक्सक्लूसिवली टू एनी अदर कंट्री, किसी देश के संदर्भ नहीं कि अमेरिका कैसे करता है, रशिया कैसे करता है, नॉट एट ऑल, सामान्यतया कैसे किए जाते हैं, बस इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। नेक्स्ट में हो सकता है कि मैं इसी टॉपिक पर आपसे कुछ बात करूं कि निर्धारक तत्व क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के। खैर मित्रों, इसके बाद मैं आपको इससे पहले वाले में बता चुका हूं, इनसे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, कि जब भारत के बारे में आप दूसरे देशों के संबंधों को पढ़ेंगे तो उन देशों के आप बैकग्राउंड को नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है करंट अफेयर्स, केवल करंट पर जोर दीजिए बस, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के हैं केवल उन पर ध्यान दीजिए, और उनके भी केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट कीजिए, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनकी छोटी छोटी चीजों में मत जाइए, छोटी छोटी घटनाओं पर भी ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है, केवल बड़ी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके महत्वपूर्ण बिंदु। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की आपकी तैयारी है, जो सिलेबस है, वो बिल्कुल शीशे की तरह चमकदार आपके दिमाग में होता चला जा रहा है, क्योंकि आपने वो कचरा छोड़ दिया है, वो चीजें जो उलझा देती हैं, चीजों को जो जटिल बना देती हैं, आपने उनसे मुक्ति पा ली है। डरिए मत, आशंकित मत रहिए कि भैया इसको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, नहीं छोड़ ही दीजिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर आपको डर लग रहा हो तो आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देख लीजिए, वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर देगा कि नहीं सच यही है और इसी के आधार पर ही मैं सही तैयारी कर सकता हूं। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अब आप लोगों के दो दिन का विश्राम है, आप इस दो दिनों को एंजॉय कीजिए, सोमवार को फिर मुलाकात होगी और फिर इस विषय पर बातें करेंगे। तो मित्रों, अब दो दिनों के लिए मुझे इजाजत दें और मेरा अभिवादन भी स्वीकार करें। नमस्कार।